ओम शांति। एक गुरु और शिष्य जंगल से गुजर रहे होते हैं। वो अपनी एक यात्रा पर होते हैं। रास्ते में एक विशाल छायादार वृक्ष उनको दिखाई देता है और उनको लगता है यहां थोड़ा देर विश्राम किया जाए। तो गुरु समाधि में लीन हो जाते हैं और शिष्य भी उनके बाजू में ही बैठा हुआ होता है। तो वो देखता है कि सामने से तो शेर आ रहा है, तो वो बिना विलंब किए उस वृक्ष पर चढ़ जाता है और ऊपर से अपने गुरुवर को बोलता है कि शेर आ रहा है, आप भी जल्दी ऊपर आ जाइए। लेकिन वो अपने साधना में इतने लीन होते हैं कि वो बिल्कुल हिलते ही नहीं, जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। बाद में शेर उनके नजदीक आता है, उनको सूंघता है और उनके कान के पास अपना मुख लेकर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है। और वो शेर जाने के बाद शिष्य नीचे उतरता है और गुरु से वो रास्ते में पूछने लगता है कि वो शेर आया, उसने आपके कान में क्या कहा। तो उनको तो जैसे पता ही नहीं कि शेर भी आया था। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ देर बाद वो जो गुरु थे उनको एक मच्छर काट लेता है और गुरुजी तिलमिला उठते हैं और कहते कि अरे ये तो बहुत ही जहरीला मच्छर होगा जिसने मुझे अभी अभी काटा है, बहुत ही विषाक्त होगा ये। और वो अपनी फुंसी भी दिखाने लगते। तो शिष्य इतना आश्चर्यचकित होता है कि कुछ देर पहले तो शेर आया था और गुरुजी बिल्कुल अचल अडोल, उनको पता भी नहीं शेर आके गया और कुछ उनके कान में भी कह के गया। और ये इतना सा मच्छर ने काटा तो इतने क्यों तिल मिला रहे हैं। तो शिष्य फिर गुरुजी से पूछता है कि देखो अभी अभी तो शेर आया था, तब तो आपको पता भी नहीं पड़ा और अभी तो सिर्फ मच्छर ने आपको काटा है, तो आप इतने पीड़ा से तरस रहे हो। तो वो बताते हैं कि संग के कारण, उस समय मैं अपने संग में था, उस भगवान के संग में था, लेकिन अभी मैं तुम्हारे संग में हूं, तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। तो तुम्हारे संग होने के कारण मुझे हाँ, तो आज का टॉपिक है संग दोष का रोग। संग दोष, संग माना कंपनी, संग माना साथी, साथ देने वाला, साथ निभाने वाला। और दोष, दोष मतलब जिसको कुसंग कहा गया है, संग तारे कुसंग बोरे, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि बैड कंपनी। और रोग, रोग माना डिसीज, व्याधि, बीमारी, जिससे व्यक्ति क्या होता है, दुख भोगता है। तो संग दोष, तो दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे संग अनेक प्रकार के हैं, वैसे दोष भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे कि वास्तु दोष, ग्रह दोष, फिर फिर अन्न दोष, और कौन सा दोष होता है? और उसको इन ब्रैकेट दोष भी कई प्रकार के होते हैं। तो पितृ दोष भी एक होता है कि वो नासिक में उसका बहुत ज्यादा होता है, वो वहां पर उसके विधि किए जाते हैं। पितृ दोष माना कि जैसे कि हमारे पूर्वज है, वो बताते हैं कि वो आपसे नाराज है जिन्होंने घर में शरीर छोड़ा है, तो उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए आप फलानी पूजा करो और ब्राह्मण को इतना दान करो, तो क्या हो जाएगा, आपसे पितृदोष हट जाएगा। ये जो बाधाएं है, विघ्न है, वो पंडित लोग करते हैं, हाँ वो टल जाएंगे। वास्तु दोष होता है तो क्या किया जाता है, वास्तु शांति की जाती है, उसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। फिर अन्न दोष, अन्न दोष तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इस विद्यालय में, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कौन सा दोष, कि संग दोष। तो ये जो संग दोष है, हमेशा क्या होता है, इस संग दोष में उंगली दूसरे के तरफ होती है, लेकिन ये तीन उंगलियां मेरी तरफ है ये हम भूल जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो जन्म लेने के बाद जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो विशेषता उसकी माता का, पिता का, दादा दादी, नाना नानी, उसके जो भी संबंधी है उनका उसके ऊपर ध्यान होता है कि ये किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ स्कूल में जा रहा है, स्कूल में भी किस कौन इसके दोस्त है। भारत में सरनेम पूछते हैं कि हाँ तुम्हारे दोस्त कौन कौन है बताओ, क्योंकि सरनेम से पता पड़ जाता है कि इसका दोस्त कौन से कुल का है। जैसे भारत में है वैसे विदेश में भी है, वहां वर्ण भेद, रंग भेद होता है। तो इसी प्रकार बचपन से ही अपने बच्चे को संग दोष से बचाने के लिए माता पिता, सगे संबंधी इन युक्तियों को अपनाते हैं कि हमारा बच्चा क्या न हो जाए, संग दोष में न आ जाए, बिगड़ न जाए। जैसे छोटा पौधा है, बीज से उसका अंकुर निकल आया है, तो उसको बचाने के लिए वो जो किसान है कब से कितनी तैयारियां करता है। पहले तो वो बीज प्रक्रिया करता है, बीज को क्या करता है, कीटनाशक जो भी है लगाता है, फिर उसको बोता है। क्यों? क्योंकि उसको जमीन के अंदर चींटियां न खा जाए, या उस बीज को डालते ही कोई पंछी आकर उसको खा न जाए, उसको अच्छे से ढक देता है मिट्टी में। बाद में थोड़ा बड़ा होता है तो उस खेती को कंपाउंड किया जाता है कि बकरी ना आ जाए, गाय भैंस ना उसको खा जाए, तो कितना उसका जतन किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह मनुष्य आत्माओं का भी, जो उसके माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसी तरह सत्यम शिवम सुंदरम, जो हमारे परम मात पिता है, दादा दादी नाना नानी भी वही है, वो कौन है, हमारा सत गुरु है कि जो हमें क्या करता है, सत्य की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते, जो हमारे सत शिक्षक है। मात पिता के बाद ये उत्तरदायित्व जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो टीचर के पास होता है, वो देखते हैं कि क्या न हो जाए, ये बच्चा अच्छा है तो ये कुसंग में न आ जाए। बिल्कुल इसी तरह एक बार माता जी ने क्या किया, मुझे कहा तुम बड़ा भाई है ना, तो छोटा भाई था तो बोला तुम उसके क्लास टीचर के पास जाओ, मिलो उनको बताओ ये पढ़ाई नहीं करता है, खेलता रहता है। तो मैं भी बड़ा भाई होने के नाते स्कूल में गया टीचर के पास और टीचर को बताने लगा, ये जो है ना घर पढ़ाई नहीं करता है, बहुत खेलता कूदता है। तो टीचर ने मुझे बुलाया, मेरा कान पकड़ लिया, बोलते तुम क्या करता है? आ गई मुसीबत। बोले तुम तो एनसीसी में है, जब देखो तब स्टेज पर स्वागतम स्वागतम करता रहता है, तुम कब क्लासरूम में होता है ये बताओ, तुम कब पढ़ाई करता है? फिर उसके बाद में कभी उसके टीचर के पास गया नहीं। वो तो आज्ञाकारी बन के गया था, मम्मी का जो आज्ञा थी उसका पालन में कर रहा था, लेकिन वो तो मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया, मुझे ही पनिशमेंट मिल गई। तो बिल्कुल उसी तरह मुझे ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि कोई मुझे ऐसा न कहे कि ये तो संग दोष में आ गया है, बल्कि मुझे ऐसा कहे कि हाँ अच्छा ये इसके साथ है क्या, कोई बात नहीं ये बदल जाएगा। हाँ ये तो कोई बदलने वाला नहीं, ये इसको बदल देगा। तो ऐसा वाला ठप्पा मुझे मेरे ऊपर लगाना है। किससे लगाना है? शिव बाबा से लगाना है। तो वो कौन है? सत शिक्षक सतगुरु है। ऐसा सतसंग मुझे मिला है तो क्या करना है? आज पहले तो मुझे अपने आप को शाबाश की दे। दो दिन पहले भी मुरली में था कि सारी दुनिया क्या है, एक बाप ही सत्संग है, कुसंग है। तो ये संग तारे और कुसंग बोरे, ये टॉपिक नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन इसके लिए प्यारे प्यारे बाप दादा ने एक उदाहरण हमेशा जो दिया है, कौन सा? जो हमने शुरुआत में गीत सुना, हंस और बगुला। संग के लिए बापा हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि बच्चे किसका संग करना है? हंस संग। और क्या चुगना है? मोती। कौन से? ज्ञान के, योग के, विशेषताओं के। और कौन से एग्जाम्पल पापा देते हैं इसके बारे में, संग के बारे में? जैसे हंस बगुला हुआ, और पारस मणि का, पारस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोहा भी पारस बन जाएगा। और हाँ चुंबक का, जैसे चुंबक सुई को खींच लेता है, वो भी चुंबक के संग में रहकर उसमें वो गुण आ जाते हैं। और हाँ सत बाप का संग करना है, ये तो है ही है, लेकिन एग्जांपल्स की जो बाबा खास देते, रूहानी गुलाब बनना है, खुशबूदार ना, ये जो भी विशेषण बाबा हमें बताते हैं कि आपको ऐसे बनना है, उनका संग, फूलों का संग करेंगे तो खुशबूदार बन जाएगी। हाँ भौरे का भी कीड़ा, भ्रमरी क्या कर देती है? गंध के कीड़े को भी क्या करती है? भू भू करके आप समान बनाती है। ये भी संग का एक सुंदर उदाहरण है। हाँ जैसे नायब है ना, डॉक्टर नहीं है तो जो नायब डॉक्टर भी कैसे होशियार बनता है, उससे भी डॉक्टर से भी आगे चला जाता है। और संग के लिए और कौन कौन से उदाहरण देते बाबा? हाँ सत का तो संग करना ही है। हाँ पुरुषार्थी श्रेष्ठ योगी आत्माओं का, क्योंकि हाँ इसके लिए तो बाहर साधु संतों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि योगी के संग से क्या क्या होता है, जीवन में कौन कौन से बदल होते, चेंजेस होते। तो हमें तो इतना श्रेष्ठ ब्राह्मणों का क्या मिला है? संग मिला है। तो क्या होता है, एक पिता तो बहुत गुणवान थे, लेकिन उनका बेटा कुसंग में जा रहा था, तो सब उनको बता रहे थे, ध्यान खिंचवा रहे थे, देखो आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपका बेटा तो कुसंग में जा रहा है। अब पिता को भी ये बात पता होती है, वो भी उनको कई बार समझाए, अपने बेटे को कि देखो आप कुसंग में जा रहे हो, ये संग अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चा है कि मान ही नहीं रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक युक्ति रचते हैं, उनको बोलते हैं बेटा इधर आओ, चूल्हे के पास जो कोयला है ना वो कोयला लेके आओ, और दूसरे हाथ में पूजा घर से चंदन लेके आना। तो वो बेटा जाता है, चूल्हे के पास जो कोयला पड़ा हुआ होता है वो कोयला एक हाथ में उठाता है और दूसरे हाथ में पूजा घर में जाकर के चंदन लेके आता है। फिर वो पिता के पास आता है तो वो बोलते हैं अभी इसको रख के आओ। तो बेटा जाता है, कोयला कोयले की जगह पे रख देता है और चंदन चंदन की जगह पर रख देता है। तो वो बोलते हैं कि अभी हाथ दिखाओ। जैसे वो पिता के सामने आता है तो पिताजी बोलते अभी अपने हाथ दिखाओ। तो हाथ देखते तो देखो कि इस संग को छोड़ने के बाद भी तुम्हारा हाथ, जिस हाथ में कोयला था वो हाथ काला है, जब तुम उसको छोड़ के आए हो, और इस हाथ में क्या था, चंदन था, तो वो उसकी खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल उसी तरह कि संग अनेक प्रकार के मुझ आत्मा को मिले हुए है, जैसे मात पिता है, जरूरी नहीं कि वो पूरे लाइफ हमारे साथ रहे। एक समय होता है कि मात पिता भी साथ छोड़ देते हैं, तो उस समय उनके जो गुण है चंदन समान, उनकी जो पालना है मात पिता की, वो हमारे साथ में होती। लेकिन अगर ऐसा कोई संग हमें मिल जाए कोयले समान, जो साथ में होते भी काला तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वो संग छूटने की बात भी उसके अंश हमारे ऊपर हमारे दिखाई देते, तो सबसे हमारा जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ कंपेनियन है, वो कौन है, जीवन साथी कौन है हमारा? शिव बाबा मिलने से पहले, शिव बाबा तो है ही, शिव बाबा तो अभी मिला ना, कितने साल पूर्व, 20 साल पहले, 25 साल पहले। लेकिन शिव बाबा मिलने के पहले भी आपका एक साथी था, जीवन साथी, स्वयं माना कौन, जिसकी पहचान हमें बाबा ने पहले लेसन में ही दी और 2 दिन पूर्व सुदेश बहन जी ने दी। अभी तो बताओ कौन है मेरा लाइफ कंपेनियन, मैं कौन हूं, आत्मा पुरुष, आत्मा पुरुष है और मेरी साथी कंपेनियन ये देह है। अब ये जो देह है ये 5 तत्वों से बनी हुई है, और आज इस समय ये जो प्रकृति है वो भी क्या है, संपूर्ण दोषपूर्ण है, सारे दोष उसमें भरे पड़े प्रकृति में। और क्या है, मेरी जो ये कंपेनियन है, कंपनी है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है ये देह, इसमें 5 विकार भी भरे हुए हैं। 5 प्रकृति से बनी हुई यह देह और इसमें क्या भरे पड़े हैं, 5 विकार हैं। कोई कह नहीं सकता कि मैं इससे मुक्त हूं परसेंटेज में। जैसे ही समय आया, जैसे ही थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिला, तो विकार अपना रूप दिखा देता है। और कई बार हम बड़ों के क्लासेस में सुनते हैं कि आत्मा का भोजन, मैंने आज कितनी बार भोजन किया, सुबह नाश्ता किया, दोपहर को भोजन किया, शाम को फिर कुछ खाया, फिर रात को भोजन किया, तो शरीर को कितनी दफा खिलाया, 4 बारी 5 बारी, बीच बीच में टोली भी खाई, तो कौन बलवान हो गया, ये देह बलवान हो गई या आत्मा बलवान हो गए? आत्मा को तो बस सुबह एक बार मुरली सुन ली वो भी जल्दबाजी में, सेवा थी, ये था वो था, आत्मा को बस एक बार ही खिलाया और इस देह को 5 बारी खिलाया तो बलवान कौन हो गया? तो ये जो आत्मा है पहले से ही कमजोर हुई पड़ी है परमात्मा मिलने के बाद भी, क्योंकि खिला तो देह को रहे हैं। स्थूल भोजन छोड़ो, कानों द्वारा, आंखों द्वारा जो संग है मुझ आत्मा को इस देह का, वो कैसा है? टोटली बैड कंपनी है। अभी हम देखेंगे कुसंग के प्रकार कितने हैं। व्यक्ति, वस्तु, लिटरेचर, फूड, फिर खेल स्पोर्ट है ना, सॉन्ग और वातावरण वायुमंडल और स्थान। स्थान कोई स्थान भी ऐसे है वहां जाते ही हमें क्या हो जाता है? संग दोष लग जाता है। अभी व्यक्ति, व्यक्ति में तो हमने देखा कि बचपन से ही कितना ध्यान रखा जाता है कि हमारा बच्चा बिगड़े नहीं है ना। दूसरा व्यक्ति, या हम किसी नए स्थान में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहां, या किसी ऑफिस में हम नई नई ज्वाइनिंग कर लेते तो तुरंत जो कलीग्स होते हैं, साथी होते हैं, वो बताते तुम फलाने से दूर रहना। वो क्या होता है, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है उस व्यक्ति के साथ, कोई झगड़ा होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरा भी उससे दूर रहे। तो क्या ये सही है? किसी की सुनी सुनाई बात पर हम किसी से, किसी को जाने पहचाने बगैर ही दूरियां बना ले? सही भी है, गलत भी है। ज्ञान होना अच्छी बात है। और हाँ, तो देखो बाबा ने तो हमें 2 बातें बताई हुई, कुसंग में भी नहीं आना है, एक के संग में भी रहना है, बाप के सभी संबंध उसके साथ भी जोड़ने हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया तोड़ निभाना है, सबके साथ निभाना भी है। फिर योगी की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि योगी वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है दोनों, एक तो कहा है तोड़ भी निभानी है, एक तो कहा है सभी संबंध तोड़, मेरे से बुद्धि योग लगाना है, सबके सहयोगी बनना है, ईश्वरीय परिवार है, दोनों बातें हैं। ठीक है, दूसरे ने बताया, मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने अपना व्यवहार अच्छा रखते हुए, सामने के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हुए व्यवहार किया, लेकिन आगे क्या? आगे तो जान ही लिया, पहचान ही लिया कि अरे इसने कहा था क्या, इससे तो कई गुना आगे है ये तो ये जो है बड़ा खतरनाक है, खुद ने भी अनुभव कर लिया। अब क्या, ये जो जीवन की नैया है इसको पार तो लगाना है, ये सागर तो है ही, उनके साथ रहना तो है, जैसे उसके अंदर नाव है, इस नाव को उस पार तक जाना है। वो तभी जा सकते हैं, कब? जब वो पानी के ऊपर हो। नाव पानी के ऊपर हो, अगर इस नाव के अंदर पानी आ गया तो वो उस किनारे तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह जो भी हमारे साथी, सहयोगी, संबंधी है, इतना भी किनारा नहीं करना है कि वो पानी नाव के अंदर आ जाए। कोई हमारे लाइफ में इतना भी इंटरफेयर नहीं करें जो हमारी नाव के अंदर वो पानी घुस जाए, हम संग दोष में आ जाए और डूब जाए। और किनारा इतना भी नहीं करना है कि वो नाव कहीं रेत पर आ जाए, पानी ही ना हो, सूखे में। सूखे में नाव चलेगी क्या? उस किनारे तक पहुंचेगी क्या? नहीं, सूखे सन्यासी बन जाएंगे। रहना उन्हीं के साथ है, उस नाव को रहना पानी में ही है, लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देना है। हाँ, तो ये जो स्थिति है तो आपको टाइम चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा है कि स्पीड भी चाहिए, रफ्तार भी चाहिए। तो संग दोष, तो हमने ये बाहर की बातें तो देख ली, ये हो गया आउटर वर्ल्ड, लेकिन अभी इनर वर्ल्ड, मैं आत्मा, मुझ आत्मा को कौन कौन से सूक्ष्म रूप में संग लगे हुए हैं, दूसरे के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर उंगली एक दिखाना कितना आसान है, लेकिन ये तीन उंगलियां जो मेरे ऊपर है ना, व्यक्ति के बाद अभी वस्तु, वस्तु में भी ये डिजिटल वस्तु ये ले लेते हैं मुख्य रूप से, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये भी क्या है। बाकी साथी संगी वो तो अभी चलो भाई रेस्ट का समय है तो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन ये तो है साथ ही नहीं छोड़ता, हृदय के अंदर भी हृदय के अंदर भी साथ देता है, साथ निभाता है ये मोबाइल जो है तो कितना साथ निभाता है, पलक भी नहीं झपकने देते, कान बिल्कुल सतर्क रहते हैं। जब टीवी था तब तो बीच में एडवर्टाइज आती थी तो थोड़ा पानी वानी पी लेते थे, अभी तो कंटिन्यू स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू सुलाता भी है और उठाता भी है अलार्म के द्वारा, ऐसा है ये डिजिटल साथी। तो इसका संग दोष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आए दिन रोज हम इसका वर्णन करते रहते। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक क्या है ये साथी जो है, इसने कैप्चर कर लिया है आपने। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, फिर अगला कौन सा था, लिटरेचर। लिटरेचर में भी हमारा साथी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लिटरेचर है, बाबा ने कहा है कि बच्चे इससे दूर रहो, जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाओ, ऐसे भी बाबा ने कहा। और क्या क्या कहा है बाबा ने लिटरेचर के बारे में, कुसंग के बारे में कि क्या होता है उससे, नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ने हैं बाबा ने, हाँ उपन्यास आदि नहीं पढ़ना है, और जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको भूल जाने के लिए बाबा ने बोला। तो इस बात को तो हमने इतना उठा लिया था, माता जी बोलती थी पढ़ाई कर रहे तो हम बोलते थे नहीं बाबा ने तो आज ही कहा है ना, पढ़ा हुआ भी भूल जाओ, और वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था तो बीच में क्या करते थे, ज्ञानामृत डाल देते थे उसमें जो स्टोरीज है वो अच्छी लगती थी। तो और क्या क्या कहा है बाबा ने, हाँ अश्लील साहित्य, ये तो हो गया साहित्य। फिर आते हैं न्यूज के ऊपर, है ना, न्यूज़पेपर, उसमें तो बैड न्यूज होते ही है, और क्या होता है, हाँ लड़ाई झगड़े की बात होती है, उसमें से व्यक्ति नए नए टेक्निक सीखता है कि अच्छा ऐसा हम भी कर सकते, और वो सुबह सुबह आता है अखबार, सुबह सुबह हम उसको पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा बुद्धि खराब होती उसमें। हाँ सुबह का टाइम जो है मन खाली होता है, जो मुरली पढ़ने का हमारा, मुरली मनन चिंतन का टाइम है, वो समय अगर हम उस व्यर्थ को दे देंगे, हाँ उसमें माइयों के चित्र भी आते हैं, और फिर क्या हो जाता है, दृष्टि से तो चित्र देखते हैं, तो ये चित्र भी क्या है, आंखों के द्वारा मुझ आत्मा को संग दोष में ले आते हैं। चित्र ही क्या करता है, हमारा चरित्र बनाता है। बाबा ने हमें बताया कि तुम्हें वो वाले चित्र साथ में रखना है, सतयुगी दुनिया के फरिश्ता रूप के अच्छे अच्छे चित्र, लेकिन क्या हो जाता है, हम कुसंग में आकर इन चित्रों को अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा को संग दोष लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, हम गुड बॉय से बैड बन जाएंगे। तो व्यक्ति वस्तु लिटरेचर ये हो गया, तो अगर इस लिटरेचर से बुरे संग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, विधि क्या है उससे बचने की, मुरली, भगवान के महावाक्य, मनन, चिंतन, लिखना, हाँ, किसी को ज्ञान सुनाना। आज बाबा ने कहा कि बाप तो ज्ञान का सागर है, लेकिन आप क्या करो, टॉपिक निकालो, अच्छे अच्छे टॉपिक पर भाषण करो। फिर चित्र, मुरली के ऊपर चित्र बना सकते हैं, जैसे चित्रकार निखिलेश जी, ये भी कोई मासी का घर नहीं है, अच्छे अच्छे चित्र निकालेंगे तो क्या होगा। उसके ऊपर भी बाबा ने कहा है कि जैसे लोग टीवी देखते हैं, वो चित्र देखते हैं, तो उनका वैसे ही चरित्र बनता जा रहा है, वैसे आपको भी ऐसे चित्र बनाने हैं कि कौन से सतयुगी दुनिया के फरिश्ता रूप के ऐसे चित्र बनाने हैं कि जिससे क्या हो जाए, मनुष्यों का चरित्र बदल जाए। और वो फिर चित्र कैसे हो, कितना बड़ा हो, इसके बारे में बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। जैसे शिवरात्रि आती है तो उन मुरलियों में तो सारा वही होता है कि कैसे शिव संदेश पहुंचाना है, कैसे शिव और शंकर का अंतर बताना है, कैसे गोले का चित्र लगाओ, कैसे झाड़ का चित्र लगाओ, वही बातें बाबा सुनाते हैं। अब लिटरेचर के बाद क्या आता है, फूड, भोजन, अन्न दोष, जैसा अन्न वैसा मन। तो देखो सीधा मन के ऊपर उसका असर पड़ता है। जैसे दुनिया में भी लौकिक में माता पिता ध्यान देते बच्चों के ऊपर कि बाहर का नहीं खाना है, कैसे बीमारियां आती है, उनको साइंटिफिकली बताते, लेकिन हमारा जो ये माता पिता है, शिव बाबा है, हमें स्पिरिचुअली भी बताते कि इसका शुद्ध अन्न से शुद्ध मन कैसे होता है। और अगर वो अन्न भगवान की याद में नहीं पकाया हुआ है, भगवान की याद में नहीं परोसा हुआ है, भगवान की याद में नहीं खाया, तो क्या हो सकता है, अन्न दोष हो जाएगा। फिर उसकी याद आएगी, बाप की याद भूल जाएगी। इसके लिए बाबा खुद भी अपना एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। साकार बाबा क्या करते थे, अगर बाप की याद भूल जाती थी, अपने आप को बाबा ने कहा चमाट लगाओ, चुटकी निकालो, है ना, हाँ, भक्ति मार्ग में बाबा, तो अन्न दोष। तो अब कहने के लिए तो आसान है ना, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सोचो, ये बातें तो कितनी अच्छी है, सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, संग में आकर ही अन्न का ये संग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमने कब आइसक्रीम खा लिया, है ना, बिल्कुल तोते बन जाते। तो जरूर आज हम एक संकल्प करेंगे कि इन संग दोष में कौन सा संग दोष मेरे अंदर है और मैं कैसे उससे छूट सकता। अन्न का संग दोष तो हो गया है। अब अगला जो है स्थान, जैसे आपने कहा कि थिएटर, कि वो स्थान ही ऐसा है, वहां जाने से व्यक्ति खराब होना ही है। तो जब हम चिल्ड्रन प्रोग्राम में आते थे तो दादी जी बताती थी कि आज तक हमने कोई सिनेमा नहीं देखा है, आज तक हमने किसी थिएटर में पांव नहीं रखा है, हाथ खड़ा करो। बच्चों से हमसे दादी ने क्या किया, प्रतिज्ञा करवाया। उस समय तो हमने नहीं रखा था थिएटर में पांव, तो दादी ने जो प्रतिज्ञा कराई हमसे, और वो प्रतिज्ञा आज भी कायम है। तो देखो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे स्थानों से बचना है कि जहां जाने से क्या हो जाता है, बुद्धि पलट जाती है, जिससे हम कुसंग में आ जाते हैं। और कौन कौन से स्थान हो सकते हैं कि जहां जाने से हम कुसंग में आ जाते हैं, हाँ, मदिरालय, होटल, हम वहां, आजकल होटल पूरा मिक्स होते हैं, स्कूल कॉलेज के बाहर भी जो होटल है वहां भी कैंटीन होते हैं, जैसे कि वहां पे सारी चीजें परोसी ही होती है। वो जो रूल्स होते हैं वो सिर्फ गेट के अंदर होते हैं, स्कूल के कॉलेज के, गेट के बाहर कोई बंधन है नहीं। जैसे ही स्टूडेंट टीचर फैकल्टी बाहर आती है तो उनके हाथ में सिगार होती है, स्मोकिंग करते हैं। तो ये स्थान, भले अपने, हमारा टिफिन अपने पास है, फ्रेंड्स कहें कि नहीं तुम अपना टिफिन खाओ, हमारे साथ बैठो तो सही, लेकिन कंफर्ट नहीं लगता। और हमें उस संघ से क्या होना है, उस दूषित स्थान से दूर ही रहना है जितना हो सके, युक्ति युक्त रहना है। और कौन सा स्थान है जिससे हमें बच के रहना है? हाँ, जहां कई प्रपंच हो रहा है, जहां दो लोग तीन लोग बैठ के आपस में क्या कर रहे, तीसरे ही व्यक्ति के क्या कर रहे, ग्लानी कर रहे। तो ये क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर होता है संगदोष। कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक हमें अच्छा लगता है तो हम वहां पर क्या देते हैं, अपना कान, है ना, अपना कान वहां पे दे देते हैं और तुरंत वहां पे बैठ जाते हैं। तो ये जो स्थान है, तो ऐसे स्थानों से हमें बचना है। फिर कौन से स्थान को हमें इसके साथ रिप्लेस करना होगा? कहाँ जा सकते हैं हम? हाँ, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बाबा के कमरे में जा सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जा सकते हैं। कि वहां जाकर क्या कर सकते हैं हम? खुले वातावरण में मनन चिंतन कर सकते हैं। हाँ, सेवा स्थान मधुबन में आ सकते हैं, भले मधुबन में तन से नहीं तो मन से, लेकिन स्थूल स्थान की बात चल रही है अभी, कि स्थूल रूप में क्या करना है। हमें लग रहा है कि यहाँ संग दोष है तो हम तुरंत वहां जाकर बैठ जाए जहां ज्ञान चर्चा हो रही है। हाँ, तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, लिटरेचर हो गया, फूड हो गया, फिर स्थान हो गया, अभी क्या बाकी है? वायुमंडल, वायुमंडल का दोष। जैसे कि हमने पहले भी एक स्टोरी सुनी थी, कौन सी? राम और लक्ष्मण जब वन में थे तो क्या हुआ, एक स्थान ऐसे आता है कि वहां पर लक्ष्मण जाते हैं तब उनको विचार आने लगता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, वनवास तो राम को हुआ है, सीता को हुआ है, मैं क्यों अपनी पत्नी को छोड़ के यहाँ आया हूँ, मैं क्यों अपने राजपाट को, सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ आया हूँ। और जैसे ही उस स्थान से बाहर आता है तो तुरंत उसके संकल्प चेंज हो रहे हैं, उस कुटिया से बाहर निकलते हैं। तो वो अपने भ्राता से पूछते हैं कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां जाता हूं तो ऐसे संकल्प आ रहे और बाहर आता हूं तो नॉर्मल हो रहा हूं। तब उन्होंने अपने अंतर आत्मा से ध्यान लगाकर देखा कि वहां पर कुछ समय पहले दो भाई रहते थे और वो राक्षस थे, राक्षस कुल के। दोनों ने आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को मार दिया था उसी स्थान पे। तो वो वाइब्रेशंस अभी भी वहां पर है वायुमंडल। तो देखो आज तो पूरी दुनिया की क्या है, वायुमंडल, इस हवा इतनी दूषित हो गई है जो खिड़की खोलना भी मुश्किल है, इतने ये वायरस क्या हुए है, फैला हुआ है। तो सदैव हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मास्क से काम नहीं चलने वाला, ये हवा इतनी दूषित है, सदैव हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही साथ में रखना पड़ेगा। उस प्राण वायु प्राणनाथ शिव बाबा को हमें साथ में रखना पड़ेगा। तो उस प्राणनाथ को हमें ऑक्सीजन के रूप में श्वासोश्वास, है ना। तो इस संग से छूटने के लिए हमें सदैव निरंतर याद की यात्रा में रहना पड़ेगा, एक घंटे का, आधे घंटे का याद नहीं, तो सदैव निरंतर याद। जैसे ज्ञान का हमने देख लिया, मनन चिंतन लिखने से पढ़ने से हम क्या इसे छुटकारा पा सकते, वैसे अगर हमें इस संग से, वायुमंडल के संग से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें निरंतर उस प्राणेश्वर शिव बाबा को साथ में रखना होगा। फिर अगला संग कौन सा है? जैसे आपने कहा था कि गीत, कहीं हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, जैसे गीत, चाहे हम अपनी कंपनी में है, डीके भी बैठे हुए हैं, या बाहर का ड्राइवर है वो गीत चला रहा है, अगर बाहर का है तो हम उस गीत को क्या कर सकते हैं, बाबा के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैठे ही है, ब्रह्मा कुमार है सभी गाड़ी में, और गीत तो बाहर का चल रहा है ना, क्यों अच्छे गीत? अपने हजारों गीत है बाबा के, उसमें से एक भी अच्छा नहीं है क्या? वही गीत चाहिए। हाँ, तो उसको उसको आप कान में लगा सकते हो, गाड़ी में लगाएंगे, गाड़ी कहीं रुकती है नाके पे, टोल नाके पे, वो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, उनकी भावना हमारे प्रति क्या है, ये तो साधु है सन्यासी, बोलेंगे देखो ये लोग भी बिगड़ गए, कैसे कैसे गीत सुन रहे, तो है ना, लाल दुपट्टा मलमल का। तो हमें दुनिया देख रही है, हम स्टेज पर है, स्पॉटलाइट में है, और वो दुनिया, वो लोग क्या कहेगा, टोल नाके वाला या वो जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या सोचेगा? वो सो क्या सोचेगा कि ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, फिल्मी गीत भी सुनने देते हैं, हम भी इस ज्ञान में चल सकते हैं। ना ना, ये तो संग दोष है। तो जितना हो सके मुझे क्या करना है, अपने आप को इस प्रकार के संग दोष से बचाना है। तो केवल हमेशा उंगली दूसरे की तरफ ही ना हो, पहले मैं खुद सत्संग में शिव बाबा के साथ मेरा संग जुड़ा हुआ हो। संग दोष में नहीं रहेंगे तो कभी इसका भावार्थ बाबा ने बताया हुआ था, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये जो मुरली है इसमें प्रश्न था, मतलब टाइटल था मुरली का कि बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है लेकिन खा नहीं सकता, साथी तो है, संगी है, बाबा तुम बच्चों के साथ खेल सकता है लेकिन खा नहीं सकता। बाबा तो बहुत कुछ कर सकता है। और प्रश्न था कि सत्संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? तो उत्तर में बाबा ने बताया है कि तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो, बुद्धि का योग बाप से लगाते हो तो पार हो जाते हो इस विषय सागर से, इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो। तो मैं आत्मा कब आई थी इस देह में? वही जो पहला जन्म था, जैसे अभी मोबाइल को चार्ज कर लिया 100% फुल, तो उसको 99 होने में कितना समय लगता है? कुछ मिनटों में ही वो 99 हो सकता है, भले आप उसको यूज भी नहीं करो। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन उस टावर के साथ है, और कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस ओपन है, तो अपने आप ही क्या हो जाता है, 99 हो ही जाता है। जैसे दिया है उसमें घृत पड़ा है, बाती रखी हुई है, तीली जलाई लगाई, बस लगाया और कुछ देर के बाद वो जो बाती होती है सफेद बाती, जहां पे जोत जल रही है वहां पे एक काला टीका पड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह। जैसे ही आत्मा देह में आई, भले वहां कुसंग नहीं है, सतयुग है पहला जन्म, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गए, देह में आ गए, तो देह की बातें तो आ ही गई। फिर धीरे धीरे कुसंग में आ जाते, तो आते हो और उतरते जाते हो। इसलिए कहा जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे, तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे और सभी कुसंग से बच जाएंगे। लेकिन हम क्या हो जाता है, देह सहित इस शब्द को ही भूल जाते हैं, बाकी सब कर लेते हैं, देह के संबंधियों को छोड़ देते हैं, पदार्थों को छोड़ देते हैं, है ना, संबंधियों को छोड़ देते हैं कि नहीं बाबा, है ना, सेवा को भी छोड़ देंगे, नहीं बाबा ने कहा है कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो सेवा भी छोड़ दो, है ना, तो सेवा को भी छोड़ के बैठ जाते हैं, वस्तु को भी छोड़ देते हैं कि नहीं अभी मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा, है ना, बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, हम तो मोबाइल भी नहीं चलाते, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो टीवी ही नहीं है, हमने तो आज तक न्यूज़पेपर देखा ही नहीं है, इतने साल हो गए ना। कितना नशा होता है इन धारणाओं का। संबंधियों को, वस्तुओं को तो छोड़ दिया, उनको संग से तो बच गए, लेकिन देह सहित बाबा ने जो पहला शब्द कहा है, इस देह की जो कंपनी है, ये जो मेरी लाइफ पार्टनर है, जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, है ना, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर सकती हूं, भगवान के साथ का अनुभव कर सकती हूं, दूसरों को करा सकती हूं, लेकिन क्या करना है, फर्स्ट क्राइटेरिया कि देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो, तभी क्या हो जाएंगे, उस कुसंग के रोग से बच जाएंगे। रोग जो फैला हुआ है चारों तरफ, तो इस रोग से बचने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये रोग मुझे लगे ही नहीं, मैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहूं। इसलिए क्या क्या कौन सी एक्सरसाइजेस बाबा ने बताई हुई है, 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई हुई है, 12 बारी कौन सी करो, फरिश्ता रूप की करो, 12 बारी निराकारी की करो, कितनी अलग अलग विधियां बाबा ने मुझे बताई हुई है, उस विधियों को मैं, उस एक्सरसाइज को करूंगा, हेल्दी फूड ग्रहण करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी लगेगी ही नहीं, तो उससे डरने का कोई कारण ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति।
हमें लगता है कि रहे हमें।